एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ग्रंथसार में आपका स्वागत है। आज हम 20वीं सदी के एक बहुत ही अहम उपन्यास पर बात करने जा रहे हैं, एक ऐसा उपन्यास जिसने दुनिया भर के पाठकों को सोचने पर मजबूर किया। मिलान कुंदेरा का विश्व प्रसिद्ध उपन्यास द अनबेरेबल लाइटनेस ऑफ बीइंग।
हाँ, हिंदी में कहें तो अस्तित्व की असह्य हल्कापन, कमाल की किताब है। और कुंदेरा, जो चेक गणराज्य से थे, जिनका हाल ही में देहांत हुआ 2023 में, वो सिर्फ कहानीकार नहीं थे।
बिल्कुल नहीं, वो एक विचारक थे। उनके उपन्यास जैसे विचारों की एक एक लैब की तरह लगते हैं, है ना?
सही कहा, विचारों की प्रयोगशाला।
और अस्तित्व की असह्य हल्कापन, ये शायद उनका सबसे ज्यादा जाना माना काम है। 1984 में आया ये उपन्यास, इसकी पृष्ठभूमि तो शीत युद्ध का वो दौर है, उथल पुथल वाला, खासकर 1968 का प्राग वसंत।
हाँ, और फिर उसके बाद जो सोवियत दमन हुआ।
बिल्कुल, लेकिन इसकी जड़ें ना उस दौर से कहीं ज्यादा गहरी हैं। ये किताब प्रेम, आजादी, संयोग, फिर वो नियति वाली बात, स्मृति और एक और चीज जिसे कुंदेरा किच कहते हैं, उसकी पड़ताल करती है।
हाँ, किच, उस पे तो बात करनी होगी, बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है।
जरूर, तो आज हम इसी दुनिया में उतरेंगे, इसकी कहानी देखेंगे, इसके पात्र और इसके जो गहरे विचार हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे।
ठीक है, तो कहानी शुरू होती है प्राग में। टाइम है लेट 1960s का, और इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो बड़ा मजेदार है, हल्कापन बनाम भारीपन।
हाँ, लाइटनेस वर्सेस वेट।
कुंदेरा यहाँ पर क्या करते हैं, वो जर्मन दार्शनिक नीचे का एक मशहूर विचार है, शाश्वत पुनरावृत्ति, यानी इटर्नल रिकरेंस।
हाँ, कि सब कुछ अनंत बार दोहराया जाएगा।
बिल्कुल, जिससे हर काम, हर चुनाव बहुत भारी हो जाता है, क्योंकि उसका वजन हमेशा रहेगा।
कुंदेरा इसको पलट देते हैं, वो कहते हैं नहीं, जीवन सिर्फ एक बार होता है, एक ही बार।
और वो जर्मन कहावत भी कोट करते हैं, आइनमाल इस काइनमाल। हाँ, आइनमाल इस काइनमाल, मतलब जो एक बार हो वो समझो हुआ ही नहीं, उसका कोई वजन नहीं।
और यहीं से वो असहनीय हल्कापन की बात आती है ना? अगर जीवन दोबारा नहीं जिया जाना, अगर हमारे फैसलों का कोई मतलब अनंत वजन नहीं है, तो क्या वो अर्थहीन हो जाते हैं?
क्या हमारा होना एक पंख जैसा हल्का है?
और अगर ऐसा है तो ये हल्कापन क्या ये आजादी है, या फिर ये खुद एक असहनीय बोझ है? यही बड़ा सवाल है।
और उपन्यास इसी सवाल को चार मुख्य किरदारों की जिंदगी के जरिए खोलता है।
हाँ, वो चार किरदार बड़े दिलचस्प हैं। सबसे पहले तो है तोमाश, एक बहुत कामयाब आकर्षक सर्जन।
हाँ, और वो जैसे हल्केपन का प्रतीक है,
है ना?
बिल्कुल, ढेर सारे प्रेम संबंध रखता है पर कोई गहरी कमिटमेंट नहीं, उसके लिए प्यार और सेक्स ये दो अलग अलग चीजें हैं। फिर है तेरेजा, वो तोमाश की पत्नी है, और वो बिल्कुल उलट, वो भारीपन की तलाश में है, मतलब वफादारी, कोई गहरा अर्थ, आत्मा की खोज,
बिल्कुल जैसे उसके अस्तित्व का बोझ। फिर तीसरी है सबीना, एक आजाद ख्याल की आर्टिस्ट, तोमाश की प्रेमिकाओं में से एक।
सबीना भी हल्केपन को चुनती है, लेकिन उसका तरीका अलग है, वो इसे एक तरह का विद्रोह मानती है।
हाँ, हर तरह के बंधन के खिलाफ विद्रोह। और चौथा किरदार है फ्रांस, एक स्विस प्रोफेसर, वो सबीना का प्रेमी बनता है।
और वो आदर्शवादी है, भारीपन और गहरे अर्थों की तलाश में रहता है, लेकिन शायद चीजों को ठीक से समझ नहीं पाता।
हाँ, वो अक्सर मिसअंडरस्टैंड करता है। तो ये चारों किरदार जैसे चार अलग अलग दिशाओं में खिंच रहे हैं, और उनके रिश्ते, उनके अंदर के संघर्ष, वही कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कोई सीधा साधा प्लॉट नहीं है इसमें।
सही, ये किरदारों की सोच और उनकी भावनाओं की एक तरह की भूल भुलैया है। तो अगर हम तोमाश की बात करें, उसका फलसफा क्या है?
वो कहता है कि प्रेम जो वो मानता है कि सिर्फ तेरेजा के लिए है, वो अलग है।
और जिसे वो कामुक मित्रता कहता है, मतलब बिना किसी इमोशनल जुड़ाव के फिजिकल रिलेशनशिप्स, वो चीज अलग है। ये उसका हल्केपन से जीने का तरीका है।
हाँ, एक तरह का कंपार्टमेंटलाइजेशन।
बिल्कुल, लेकिन तेरेजा जब उसकी जिंदगी में आती है तो ये संतुलन गड़बड़ा जाता है। कुंदेरा लिखते हैं कि उसे तेरेजा के लिए जुनून नहीं होता बल्कि करुणा होती है, मिटलाइड।
हाँ, मिटलाइड, एक तरह की गहरी सहानुभूति या दया जो उसे बांध रहती है।
सही, और तेरेजा वो तोमार से बेनतहा प्यार करती है, पर उसकी बेवफाई से उसे बहुत तकलीफ होती है, उसके वो डरावने सपने।
हाँ, और शरीर को लेकर उसकी शर्मिंदगी, वो आत्मा और शरीर के बीच का द्वंद्व, ये सब उसके भारीपन को दिखाता है। वो हर चीज में वजन ढूंढ रही है, मीनिंग ढूंढ रही है।
और यहीं पर कुंदेरा किच का जिक्र करते हैं, ये शब्द समझना बहुत जरूरी है इस उपन्यास के लिए। आपके हिसाब से किच क्या है, अगर सरल शब्दों में कहें?
किच मतलब जैसे एक तरह का बनावटीपन, जहां सब कुछ सुंदर, अच्छा, आदर्श दिखाया जाए। जैसे
हाँ, जैसे कोई बहुत भावुक, मीठा सा फिल्मी गाना हो, जहां दुख, गंदगी या असलियत की कोई जगह ही ना हो। या फिर वो राजनैतिक प्रोपेगेंडा, जहां सब मुस्कुराते हुए खुश दिखते हैं। कुंदेरा कहते हैं किच मल का पूर्ण इनकार है।
अच्छा, मतलब जिंदगी की जो मुश्किल बदसूरत सच्चाइयां हैं उनको पूरी तरह नकार देना, जैसे दुख, शक, बुराई, मौत।
बिल्कुल, किच एक ऐसी नकली दुनिया बनाता है जहां सब कुछ आसान, सुंदर, स्वीकार्य लगे। ये चाहे राजनीतिक तानाशाही का किच हो,
जहां सब महान नेता की जय जयकार कर रहे हो,
हाँ, या फिर भावनाओं का किच हो, जैसे जरूरत से ज्यादा भावुक प्रेम कहानियां। कुंदेरा इसे खतरनाक मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें जिंदगी की असलियत और उसकी मुश्किलों का सामना करने से रोकता है। ये एक तरह का सुंदर झूठ है
जो हमें प्रामाणिक अनुभव से दूर ले जाता है।
और सबीना वो इसी किच के खिलाफ विद्रोह करती है ना?
हाँ, उसका तो जीवन ही जैसे विद्रोह की एक सीरीज है। पिता के खिलाफ, देश के खिलाफ, पार्टी, प्रेमी, हर चीज के खिलाफ। वो मानती है कि हल्कापन, मतलब किसी भी चीज से न बंधना, यही किच से बचने का तरीका है। उसका वो प्रतीक भी है, बॉलर हैट।
हाँ, वो बॉलर हैट विद्रोह का, व्यक्तित्व का निशान। लेकिन कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, हम देखते हैं कि शायद उसका हल्कापन भी, वो भी एक तरह का बोझ बन जाता है। खैर, उस पे बाद में आते हैं। पहले कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है जब इतिहास, हिस्ट्री, किरदारों की जिंदगी में दखल देती है। 1968 का प्राग वसंत।
हाँ, वो दौर जब चेकोस्लोवाकिया में थोड़ी आज़ादी की हवा बहती है, लोग खुलकर बोलते हैं, लिखते हैं, और इस माहौल में तेरेजा को जैसे एक नया मकसद मिल जाता है।
वो तस्वीरें लेती है सड़कों पर।
हाँ, वो सोवियत टैंकों की लोगों के प्रतिरोध की तस्वीरें खींचती है। उसका कैमरा, उसका शरीर, जो पहले उसके लिए शर्म का कारण था, अब उसकी हिम्मत, उसकी कला का जरिया बन जाता है। उसे लगता है जैसे वो इतिहास का हिस्सा बन रही है, उसकी जिंदगी में वजन आ रहा है।
लेकिन ये उम्मीद ज्यादा दिन नहीं टिकती है, है ना? सोवियत सेना प्राग पर कब्जा कर लेती है, दमन का दौर शुरू होता है, और इसी माहौल में तोमाश और तेरेजा ज्यूरिख चले जाते हैं, स्विट्जरलैंड, निर्वासन में।
ज्यूरिख में तोमाश फिर से अपनी वो कामुक मित्रताएं शुरू कर देता है। तेरेजा वहां अकेली पड़ जाती है, भाषा नहीं आती, देश छूटने का दुख और ऊपर से तोमाश की बेवफाई, ये सब मिलकर उसके लिए वो निर्वासन का हल्कापन असहनीय बना देते हैं।
उसे लगता है कि वो तोमाश पर बोझ है।
हाँ, और एक दिन वो एक चिट्ठी लिखकर अपने कुत्ते कैरेनिन के साथ चुपचाप वापस प्राग लौट जाती है, अकेली।
तोमाश के लिए एक ऐसा मोमेंट रहा होगा जब उसे पता चला होगा, पहले तो शायद थोड़ी राहत, आजादी का एहसास।
हाँ, कुंदेरा लिखते हैं कि शुरुआत में उसे ऐसा ही लगता है, हल्कापन महसूस होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे तेरेजा की याद सताने लगती है, एक अजीब सी बेचैनी, एक चिंता। उसे बीथोवन की एक धुन याद आती है।
हाँ, बीथोवन का एक स्ट्रिंग क्वार्टेट।
और एक जर्मन फ्रेज उसके दिमाग में गूंजने लगता है,
एस मुस साइन।
एस मुस साइन यानी ये होना ही चाहिए। ये उपन्यास के सबसे यादगार हिस्सों में से एक है। इसका मतलब क्या है? क्या ये किस्मत है, नियति, या ये एक चुनाव है, एक जरूरत?
कुंदेरा इसे थोड़ा खुला छोड़ते हैं, लेकिन तोमाश के लिए ये एक अंदरूनी जरूरत बन जाती है। उसे एहसास होता है कि तेरेजा के बिना उसका जीवन अधूरा है, कि उसके प्रति उसका प्यार और जिम्मेदारी एक ऐसा भार, एक वजन है जिसे उसे उठाना ही होगा, खुशी से।
और वो फैसला करता है।
हाँ, वो फैसला करता है। स्विट्जरलैंड का अपना कामयाब करियर, अपनी आजादी, सब कुछ छोड़कर वो वापस दमन वाले प्राग लौट जाता है, तेरेजा के पास।
ये तोमाश के किरदार का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। वो आदमी जो हल्केपन में जी रहा था, अब जानबूझकर भारीपन चुन रहा है। तो क्या कुंदेरा यही कह रहे हैं कि सच्ची खुशी या सार्थकता वो उस बोझ में है जिसे हम खुद चुनते हैं अपनी मर्जी से? हो सकता है, लगता तो यही है, क्योंकि प्राग लौटने के बाद उनका जीवन काफी बदल जाता है। तोमाश को डॉक्टर का काम करने से मना कर दिया जाता है क्योंकि वो एक पुराने राजनीतिक लेख पर साइन करने से इनकार कर देता है।
तो वो क्या करता है फिर?
वो पहले खिड़कियां साफ करने का काम करने लगता है और फिर तेरेजा के साथ शहर छोड़कर गाँव चला जाता है,
एकदम देहात में।
हाँ, वहाँ वो ट्रक ड्राइवर बन जाता है।
शहर की भागदौड़, इतिहास के दबाव, इन सबसे दूर गांव में उन्हें एक अजीब सी शांति मिलती है। उनका जीवन बहुत सरल हो जाता है।
हाँ, बस काम, एक दूसरे का साथ और उनका प्यारा बूढ़ा कुत्ता कैरेनिन।
कैरेनिन का जिक्र बहुत जरूरी है, जैसा आपने कहा। वो सिर्फ एक पैच नहीं है इस कहानी में।
बिल्कुल नहीं। कुंदेरा उसके जरिए समय और अस्तित्व पर सोचते हैं। कैरेनिन का जीवन कैसा है? वो चक्रीय है, साइक्लिकल, रोज वही रूटीन, खाना, सोना, घूमना, प्यार पाना। उसमें वो इंसानी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, आत्मा बनाम शरीर, हल्कापन बनाम भारीपन।
उसकी जिंदगी में वो द्वंद्व नहीं है।
उसकी जिंदगी एक तरह का पैराडाइज है। कुंदेरा उसकी मुस्कान का जिक्र करते हैं, जिससे वो इन सारे विरोधाभासों से परे एक शांति का प्रतीक हो।
और कैरेनिन की मृत्यु, वो उपन्यास के सबसे मार्मिक इमोशनल मोमेंट्स में से है। वो दिखाता है कि कैसे एक जानवर के साथ भी हमारा रिश्ता इतना गहरा, इतना मीनिंगफुल हो सकता है।
हाँ, और उसकी मौत के कुछ ही समय बाद तोमाश और तेरेजा की भी एक ट्रक दुर्घटना में एक साथ मौत हो जाती है। उपन्यास उसका वर्णन बहुत सीधे सपाट ढंग से करता है, फैक्ट की तरह, बिना किसी भावुकता के।
लेकिन ऐसा लगता है कि शायद मौत से पहले उन्होंने गांव में, उस सिंपल लाइफ में, एक तरह का खुशहाल भारीपन पा लिया था। एक ऐसा वजन जिसे उन्होंने मिलकर खुशी से उठाया।
हाँ, एक सुकून पा लिया था।
तो ये तो हुई तोमाश और तेरेजा की कहानी, लेकिन बाकी दो किरदारों का क्या हुआ, सबीना और फ्रांस?
उनके रास्ते बिल्कुल अलग जाते हैं। सबीना फ्रांस को छोड़कर पहले पेरिस जाती है, फिर अमेरिका। वो लगातार भागती रहती है, हर बंधन से, हर रिश्ते से, हर जगह से। लेकिन उसका चुनावा हल्कापन, वो आखिरकार उसे गहरे अकेलेपन और खालीपन तक ले जाता है।
और उसका वो प्रतीक, बॉलर हैट।
हाँ, जब वो देखती है कि उसका वो बॉलर हैट फेमिनिस्ट प्रदर्शनों में इस्तेमाल हो रहा है, एक सामूहिक प्रतीक बन गया है, तो उसे लगता है कि उसका विद्रोह भी अब किच बन गया है, उसकी अपनी पहचान जैसे खो गई है।
और फ्रांस, वो आदर्शवादी प्रोफेसर।
फ्रांस अपनी पत्नी को छोड़कर सबीना के पीछे जाता है, पर उसे वो कभी समझ ही नहीं पाता। सबीना के जाने के बाद वो अपनी जिंदगी में भारीपन लाने की कोशिश करता है। वो थाई कंबोडिया बॉर्डर पर एक प्रोटेस्ट मार्च में शामिल होता है, जिसे ग्रैंड मार्च कहा जाता है।
लेकिन वो मार्च भी एक तरह का
दिखावा बन जाता है, एक मीडिया इवेंट। कुंदेरा के लिए ये भी किच का ही एक रूप है। और उसकी मौत भी बड़ी अजीब बेतुकी होती है। बैंकॉक में एक सड़क लूटपाट में मारा जाता है, जैसे उसके भोले आदर्शवाद का एक दुखद व्यर्थ अंत।
तो अगर हम इस उपन्यास के मुख्य थीम्स को समेटने की कोशिश करें, तो सबसे पहले तो वही हल्कापन बनाम भारीपन का द्वंद्व है। और शायद उपन्यास यही दिखाता है कि दोनों ही एक्सट्रीम्स असहनीय हैं।
हाँ, ना तो पूरी तरह भारहीन होना मुमकिन है, ना ही हर चीज का बोझ ढोना। शायद संतुलन बीच में कहीं है, उस भार में जिसे हम खुद चुनते हैं, समझकर।
दूसरा बड़ा विषय है किच, वो बनावटीपन, वो सुंदर झूठ जो जिंदगी की मुश्किल सच्चाइयों को छुपाता है, चाहे वो राजनीति में हो, कला में, या हमारे रिश्तों में भी।
बिल्कुल। कुंदेरा हमें इस किच को पहचानने और जिंदगी को उसकी पूरी कॉम्प्लेक्सिटी में देखने की चुनौती देते हैं।
फिर शरीर और आत्मा का संघर्ष है, खासकर तेरेजा के जरिए। संयोग बनाम जरूरत का सवाल भी उठता है। क्या हमारी जिंदगी बस संयोगों का खेल है, या उसमें कोई गहरी जरूरत, एस मुस्जाइन, काम कर रही है?
और पर्सनल और पॉलिटिकल का रिश्ता, कैसी बड़ी राजनीतिक घटनाएं आम लोगों की निजी जिंदगी पर असर डालती हैं, या कभी कभी निजी जिंदगी की उथल पुथल उन बड़ी घटनाओं पर भारी पड़ जाती हैं।
और कुंदेरा का लिखने का अंदाज भी बहुत अनोखा है। वो जो नैरेटर है, वो कहानी सुनाते सुनाते बीच में रुक जाता है।
हाँ, पाठक से सीधे बात करने लगता है, किरदारों के मन की बातें बताता है, फिलॉसफी झाड़ता है।
कहानी सीधी रेखा में नहीं चलती, कभी आगे कभी पीछे, जैसे कोई म्यूजिकल कॉम्पोजिशन हो। व्यंग्य का इस्तेमाल है, प्रतीकवाद है, वो बॉलर हैट, आईने, भारी सूटकेस, कैरेनिन, ये सब कहानी को कई परतें देते हैं।
सही।
अगर कोई इसे पढ़े तो भावनात्मक स्तर पर ये किताब कैसी लगती है? मतलब क्या ये उदास करती है, सोचने पर मजबूर करती है, क्या छोड़ जाती है पाठक के मन में?
मेरे ख्याल से सब कुछ। इसमें एक अजीब सी उदास खूबसूरती है, मेलैंकोलिक ब्यूटी। आप तेरेजा का दर्द महसूस करते हैं, तोमाश के बदलाव से प्रभावित होते हैं, सबीना का अकेलापन कहीं ना कहीं खलता है, और वो गांव का जीवन, कैरेनिन के साथ वो पल, वो दिल को छू जाते हैं।
अंत दुखद है, पर उसमें एक शांति भी है।
हाँ, एक तरह की क्लोजर वाली शांति। ये किताब कोई आसान जवाब नहीं देती, बल्कि सवालों के साथ छोड़ जाती है। हल्कापन या भारीपन, आज़ादी या जिम्मेदारी, ये पाठक को इन्हीं सवालों के बीच छोड़ देती है। जिंदगी के विरोधाभासों को जैसे स्वीकार करना सिखाती है।
कुछ पंक्तियां हैं जो वाकई दिमाग में रह जाती हैं, जैसे वो आइनमालिस काइनमाल, जो एक बार होता है वो मानो हुआ ही नहीं। ये तो जैसे उपन्यास की बुनियाद है।
हाँ, और किच की वो परिभाषा, किच मल का पूर्ण इनकार है। ये मानव अस्तित्व में अनिवार्य रूप से अस्वीकार्य हर चीज को अपने दायरे से बाहर रखता है। ये आज भी कितनी कितनी रेलेवेंट लगती है।
बिल्कुल। और तुमशाइन का वो एहसास, एस्मुसजाइन, ये होना ही चाहिए।
राइट।
प्यार और जिम्मेदारी को अपनाने का वो पल।
और वो लाइन भी, मानव समय एक वृत्त में नहीं घूमता, ये एक सीधी रेखा में आगे बढ़ता है, इसीलिए मनुष्य खुश नहीं हो सकता। खुशी पुनरावृत्ति की लालसा है, ये इंसानी जिंदगी की सीधी दौड़। और कैरेनिन के चक्रीय शांत जीवन का जो कंट्रास्ट है, कमाल का है।
सचमुच ये उपन्यास हमें आजादी और प्रतिबद्धता, हल्केपन और भारीपन के बीच अपना रास्ता खोजने की जो मुश्किल है, जो जटिलता है, वो दिखाता है।
और शायद ये भी याद दिलाता है कि जीवन का अर्थ बोझ से भागने में नहीं है, बल्कि अपने चुने हुए बोझ को, जिसे हम खुद चुनते हैं, उसे समझने और उसे गरिमा के साथ उठाने में है।
यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।